परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन का विषय है उत्तम तप।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दूर दूर से लोग आ जाते हैं और उस स्थान पर उस दिन ठहर करके उस दृश्य का अवलोकन करना और उस दृश्य के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। वह एक स्थान है भारतवर्ष में आबू पहाड़, बहुत ऊंचाई के ऊपर है वो, और वहाँ पर चढ़ करके सनसेट का अवलोकन करते हैं। और इधर पूर्व की ओर कहीं जा करके या और वहीं से सनराइज का भी अवलोकन करते हैं। सूर्य की वह दशा है जो दोनों दशाओं में राग का अनुभव होता है। संसारी प्राणी राग को ही अच्छा मानता है। सनराइज के सामने समय पर कि आंखों को कोमल कोमल वो किरणें लुभाती रहती हैं, मनोहर दृश्य कह करके उसका अनुभव करते हैं। और जिस समय वह डूबता रहता है उस समय में भी उसी प्रकार का दृश्य, थोड़े बहुत भली अंतर हो, वह लालिमा रहती है। उस समय आसमान आकाश का दृश्य सुहाना रहता है आदि आदि। लेकिन सनब्राइट का अवलोकन करना कोई भी नहीं चाहता। अब वो सन की तो दशा है, लेकिन जिस समय सनसेट है और सनराइज है, दोनों समय तो सन, दो प्रकार के सन होते हैं, सन का अर्थात सूर्य होता है और सन का अर्थात बेटा भी होता है। हमें बेटे को देखने से कोई अनुभव प्राप्त नहीं होने वाला है। हमें तो ब्राइट सन, जो फादर्स ऑफ सन, जो जिस समय अपनी पूरी शक्ति लगा करके पृथ्वी को तपा देता है और किसान लोगों के लिए प्रिय वही है। जब तक नव तपा नहीं होंगे तब तक मेघ वर्षाओं का कोई सवाल नहीं उठता है। तपे बिना शांति नहीं, तपे बिना शांति नहीं है। आपको शांति चाहिए? हाओ बुंदेलखंड की बात है ये, बुंदेलखंड में हाओ बोलते हैं और HOW हाओ भी होता है। वो यहां पर नहीं है। हमें शांति चाहिए। ध्यान रखना, जिस समय पृथ्वी तप तप करके उसमें जब तक दरार नहीं पड़ती तब तक के लिए किसान को चैन नहीं। वह कहता है कि मुझे पूरी खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं। खाद में एक प्रकार से उष्णता पैदा करने की शक्ति तो रहती है और सूर्य के ये तपन, ये किरण और ये प्रकाश, इसके द्वारा पृथ्वी को वह शक्ति मिलती है। विदेश कृषि शास्त्र इसके सामने फेल है। भारतीय सभ्यता अलग है। भारत परिग्रह का एकीकरण करना नहीं चाहता और वह परिग्रह की मात्रा को बढ़ाना चाहता है। भारत परिग्रह का निषेध भी नहीं करता, लेकिन जितना आवश्यक है उतना। पृथ्वी के भीतर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा जो कि त्यों बनी रहती है, और तपन जितना इसके लिए मिलना आवश्यक है उतना मिलना आवश्यक है। एक फसल काट लिया, पुनः उस जमीन में बीज बोना उस खेत के लिए अभिशाप है। खाद दे देकर के आप यदि करोगे तो उसकी शक्ति ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। कुछ उसमें ऐसा अंतराल मिलना आवश्यक है जिसके द्वारा उस शक्ति की पूर्ति अपने आप हो जाती है। तो वह किसान भारत का फसल काटने के उपरांत सूर्य नारायण का दर्शन करता है और उस सूर्य नारायण को देखना चाहता है। जब तक नव तपा के माध्यम से पृथ्वी का तेल जले नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलती। कड़ाड़ी की धूप मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं जल्दी जल्दी वर्षा हो जा, किसान कहता है जल्दी अभी वर्षा बुलाओगे तो फसल पकेगी नहीं, पूरी की पूरी भी उष्णता पृथ्वी में जाना आवश्यक है। तो इसलिए उस सूर्य का दर्शन करो जिसके माध्यम से फसल उगने वाली। बाल सूर्य के द्वारा फसल नहीं उग सकता। बाल सूर्य के किरण के पास यह शक्ति नहीं है कि वह उस अंकुर को प्रौढ़ बना सके। छाव में जिस प्रकार जो वनस्पति वेल रहती है और वह बहुत जल्दी पनपती है, दशहरा होता अथवा जो शुद्ध चक्र मंडल विधान है अथवा पंच कल्याण महोत्सव प्रतिष्ठा महोत्सव होता, उस समय अंकुरारोपण बोलते हैं, प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं अंकुरारोपण करना। उनको छाव में कहीं पर गमले या और कुछ पात्र में रख करके उसमें पानी रखा और जो कुछ भी मिट्टी वगैरह डाल करके रख देते हैं और वो अंकुर दो तीन दिन के उपरांत उत्पन्न हो जाते हैं और 8-10 दिन के उपरांत जो है वो बहुत इतने इतने हो जाते हैं। लेकिन उनका रंग रोगन देखा आपने कैसा रहता हो, बिल्कुल पीला पीला रहता है जैसे कहीं पीलिया हो गया हो। बहुत शक्ति उसकी कमजोर रहती है। वो खड़े तो हैं अंकुर लेकिन थोड़ा फूंक मार दो तो गिर जाते हैं। उनके जड़ों में इतनी शक्ति नहीं है और उनके भीतर जो कुछ भी तना है उनका उसमें कोई शक्ति नहीं है, केवल पानी पानी मात्र है। अब यह ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, सूर्य प्रकाश का अभाव है। वो भी तप जाता है तो पीला नहीं रहेगा किंतु वह हरा हो जाएगा और नीला हो जाएगा, गाढ़ नीला हो जाएगा और उसके पास ऐसी शक्ति आ जाएगी कि कितनी भी उष्णता हो जाए तो वह जलेगा नहीं। किंतु यह जो अंकुर उत्पन्न हुए हैं जो छाव में उनको धूप में ले जाओ एकदम वो सूख जाएंगे। इसलिए तपन के बिना शांति नहीं वर्षा नहीं। ऐसी कैसी बात है कि ऊपर से कहीं जल थोड़ी आता है किंतु समुद्र का जल जो तप जाता है। और कैसे तप जाता है, इन दिनों में तपा हुआ नहीं है वह जो वर्षा काल से पूर्व ग्रीष्म काल जो आया था उसका जो तपन था उसके द्वारा वातावरण में जो ऊष्मा बढ़ गई उसके माध्यम से जो बादलों के निर्माण प्रारंभ हो गए उसके बिना मानसून नहीं आ सकता। ये लोकल गर्मी का ये प्रतिफल है, इसके द्वारा फसल नहीं कायम होती। कायम जो होती है श्रावण की झड़ी में और उसके लिए कहां से बादल उठ उठ करके आते हैं, समुद्र के ऊपर से आते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, पूरा का पूरा जल तप जाता है और वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। जल का जड़त्व दूर होकर के ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्वगमन कर जाता है। ऊर्ध्वगमन होने के उपरांत बादलों के निर्माण हुआ करते हैं, फिर बाद में उसके लिए योग्य वातावरण मिल जाता है तो वह सारे सारे बूंदे टपकने लग जाते हैं। तो यह जब तक ग्रीष्मावकाश का अंतराल को सहन नहीं करेगा तब तक यह स्थिति नहीं आती और पृथ्वी में भी यह शक्ति आ जाती है, उस जल को पूरा का पूरा वह पी लेती है, बाद में फसल खड़ी हो जाती है। वह किसान हमेशा उस सूर्य नारायण का दर्शन करना चाहता है जो ब्राइट ऑफ सन, जो फादर ऑफ सन। वह सन नहीं है, वह अब पिता है। मां कैसी होती है, मां हमेशा प्रेम देती, डांट डपट नहीं करती है। खिलाती है पिलाती और लाडला प्यार कर देती है। पिताजी क्या कहते हैं, डांटते रहते हैं, क्या करता है तू, जा स्कूल जा, लेकिन माँ ऐसे नहीं कहते। तो पिताजी के माध्यम से उसको भीति पैदा हो जाती है, वह पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देता है। तो उसी प्रकार वह सूर्य जब तक तपेगा नहीं तब तक यह पृथ्वी फलीभूत नहीं होगी, इसीलिए तप को आज रखा है। ऐसा तप रखा है, ऐसा नहीं जो सुबह और शाम धूप रहती है, उसमें भी धूप तो रहती है, लेकिन उस धूप को आप देख भी सकते हैं आंखों के द्वारा, लेकिन यू देखो ऊपर उसके प्रकाश में हम वस्तु को तो देख सकते हैं, लेकिन उस प्रकाश को हम देखना नहीं चाहते हैं। मध्यान का सूर्य क्या करता है, पूरा का पूरा हमारे जीवन को केंद्रीभूत कर देता है। सुबह वह सूर्य दोनों क्षितिज के ऊपर ही खड़ा हुआ देखने में मिलता है, जिस समय हमारी दृष्टि बहुत दूर चली जाती है। जैसे जैसे वह सूर्य ऊपर आता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी जो छाया दूर लंबी पड़ गई थी वह भी सुकृति 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 आ जाती है। कहां पर आ जाती है, अपने पैरों में आ जाती है। अपने पैरों में जब आ जाती है उस समय हमारे आंखें भी अपने आप ही बंद होने लग जाती हैं। मध्यान्ह के वातावरण को कोई देखना नहीं चाहता, वह हमारी छाया इन दोनों अंगूठे के बीच में चली जाती है, उस समय हम छाव से रहित हो जाते हैं। देवानाम छाया न, देवानाम छाया, देवों की छाया नहीं होती और महादेवों की छाया उनकी भी नहीं होती, और छाया किसकी होती है, हम लोगों की होती है। विकार का नाम छाया है। जब वस्तु पूरे के पूरे एकाग्र हो जाएगी उस समय उसकी छाव नहीं रहेगी, वह बिल्कुल बिंब के समान बैठ जाएगा, उसकी आंखें बंद हो जाएगी, बाहर की आवाज कोई सुनेगा नहीं, और मध्यान मध्य में वह आ जाता है। उस समय हम अपने आप में लीन हो जाते हैं, पशु पक्षी सब अपने अपने नीड़ों में जाकर के बैठ जाते हैं शांति के साथ, आप लोग भी सब बंद करके बैठ जाते हैं शांति के साथ, कोई बोलो नहीं शालो नहीं, आराम के साथ बैठ जाओ। मध्यान के समय पर ही आत्मा का अवलोकन संभव है, जिस समय तपन पूर्ण डिग्री तक पहुंच जाता है। संयम के साथ रत्नत्रय रहता है, और आज का दिन उत्तम तप का है, रत्नत्रय का द्वारा कल्याण संभव नहीं है। रत्नत्रय वह वस्तु है जो हमारी छाया दूर दूर तक फैल गई है, रत्नत्रय वह भेद परक वस्तु है। जब तक वह भेद का अभाव होकर के अभेद में अंतर्भूत नहीं होगा तब तक वह संभव नहीं, और वह तप आराधना जब तक नहीं आए तब तक रत्नत्रय भी यूं ही बिखरे हुए रहते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ऐक्य रूप प्रदान करने का एक श्रेय मिलता है, तो वह सम्यक तप को मिलता है। संयम के द्वारा रत्नत्रय का लाभ होता है, तो सम्यक तप के द्वारा रत्नत्रय को एकता का रूप मिल जाता है, और एकता के बिना तीन काल में मुक्ति संभव नहीं है। और वह एकता कैसी आएगी, तप के बिना नहीं आएगी, और वह तप एक प्रकार से भेद मिटाने वाला है। आपको हलवा खाना है, हाँ हलवा कोई एक बनाने के लिए तैयार करता है, सामग्री ले आता है, मीठा ले आया, आटा ले आया और घी ले आया, फिर क्या, इनको मिश्रण करना, यही तो हलवा है। ठीक है, इनका मिश्रण करा दो और हिला दो, हलवा बन जाएगा, देख लो। नहीं बना, कैसा बनेगा, एक घंटा रखे रहो, दो घंटा रखे रहो, तीन घंटे रखे रहो, बनने वाला नहीं, कोई ऐसी कहा लब्धि आ जाएगी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, चतुर्थ काल में भी हलवा मीठा आटा और घी के द्वारा ही बनता था और अब भी बनेगा, लेकिन उस समय में भी और इस समय में भी वही तत्व आवश्यक है काल की अपेक्षता नहीं। वही चतुर्थ काल, वही काल, उस समय में हलवा बनता था, इस समय भी हलवा बनता है, लेकिन उस समय हलवा काल के द्वारा बनता हुआ और इस समय हलवा और दूसरी वस्तु के द्वारा नहीं, काल के द्वारा बन ही नहीं सकता। किंतु जब उसके लिए यथोचित पात्र में रख करके और नीचे से किसको अग्नि देवता यही नमः, सीधी सीधी बात है, जब तक उसको लाओगे नहीं तब तक वह आपका हलवा नहीं बनने वाला है। फिर ये ध्यान रखना, जब हलवा बन जाएगा फिर बाद में हमारा मीठा कहाँ है, हमारा आटा कहाँ है, हमारा घी कहाँ है, इसी में है, कैसी दिखाओ, क्या पता आप लोगों ने उसको बनावट तो नहीं किया, अतप्रहरी घी था, तो ये जो कुछ था वो इसी में है, हमें ये विभाजन करके दे दो। विभाजन तो अब संभव नहीं है, अब तो विभाजन संभव है इस जिह्वा के द्वारा केवल मात्र, उसका स्वाद लेकर के कहा जा सकता है कि इसमें मीठा इतना पड़ा हुआ है, इसमें इतना घी है, और घी किस क्वालिटी का है, और वह मीठा भी किस क्वालिटी का है, आटा कितना होगा, आदि आदि तोलने वाली यह रसना है, अब कोई भी तोल नहीं सकता, अब विभाजन संभव नहीं है। इन तीनों वस्तुओं को एक रूप किसने दिया, अग्नि ने दिया, अग्नि के पास ये हलवा है इस प्रकार प्रकाश देने की भी क्षमता है, और अग्नि के पास इसमें इसके द्वारा हलवा बन सकता है ऐसी शक्ति भी बता देता, जो ही वो पक जाता तो हलवा का निर्माण हो जाता है, अग्नि के बिना वह संभव नहीं है। यह परिवर्तन जिस प्रकार अनिवार्य हुआ इस परिवर्तन के लिए अग्नि तत्व, उसी प्रकार रत्नत्रय को स्वाद लेना चाहते हो और आत्मा की अनुभूति का परख करना चाहते हो, ध्यान रखना सम्यक तत्व में आपको लीन होना पड़ेगा। आज तक का एक रिकॉर्ड है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धारण करते हुए भी संवाद मधुरो भी न अपानम घन्नादि, सभी आगम के अनुगामी होकर के भी विशारद होकर के भी आत्मा की अनुभूति उन्हें प्राप्त नहीं हुई, आत्मा का स्वाद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने तप को अंगीकार नहीं किया उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तप का मतलब यह है तीनों को एकीकरण करके, रत्नत्रय को एकीकरण करने का श्रेय एकमात्र तप को मिलता है, इसलिए इसको आराधना बोलते हैं। सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना और सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तपाराधना, इन तप के अभाव में उसको आराधना नहीं बोलते थे किंतु उसको रत्नत्रय बोलते थे। तप के माध्यम से ही वह आत्मानुभूति का प्रकाश उसे स्वाद मिल सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए अग्नि के बिना जिस प्रकार हलवे का स्वाद नहीं आ सकता, उसी प्रकार आत्मा का स्वाद बिना तप संभव नहीं, और वह भी तप कौन सा, वह भी तप कौन सा, जिस तप के द्वारा भीतर भी परिवर्तन आ जाए, आतप के माध्यम से भी रख लो तीनों आटों वगैरह नहीं, ऐसा नहीं, और अग्नि का संयोग आटे के लिए अलग दे दो, घी के लिए अलग दे दो, और शक्कर के लिए अलग दे दो, शक्कर के लिए दे दोगे तो चासरी बन जाए या और कुछ भी बन जाए उसका रूप, घी को और तपा दोगे तो और उसका उसकी गंध भी बिगड़ जाए और वह सब कुछ बिगड़ जाए, और आटे को कर दो तो क्या बन जाए, ज्यादा ज्यादा सत्तू बन जाएगा, और कुछ होने वाला है ही नहीं, हलवा बनने वाला नहीं है। इन तीनों के मिश्रण करना आवश्यक है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय को एक रूप मिलता है तप के माध्यम से, इसलिए ये रत्नत्रय तीन नहीं है, किंतु श्रद्धान के साथ ढला हुआ उपयोग, ज्ञान के साथ चिंतन के साथ ढला हुआ उपयोग और राग द्वेष छोड़ने में जो उद्यमशील उपयोग है उसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, और तप के माध्यम से ये तीनों एक बन जाते हैं। दौलत राम जी की वह कड़ी याद रखिए, जहां ध्यान ध्याता ध्येय कोन विकल्प वच भेदन जहां चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। तीनों अभिन्न तीनों अखिन्न शुद्ध उपयोग के निश्चल दशा प्रगति जहां दृग ज्ञान वृत्तिये तीन धा एक लशा। इसको बोलते हैं एकता। रत्नत्रय अब तीन के रूप में न रह करके एक हो गया। अब चार को बोलते हैं एकता। रत्नत्रय अब तीन के रूप में न रह करके एक हो गया। अब चार के रूप में न रह करके एक हो गया। ऐसे एक में खो जाता है उसमें चेतना की ही महक आने लग जाती है, उसमें चेतना की ही गंध आने लग जाती है। अब सम्यक दर्शन नहीं रहा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा दर्शन ज्ञान और चारित्र ये व्यवहार के द्वारा कहा गया है, किंतु वह दर्शन ज्ञान और चारित्र निश्चय से देखा जाए सो गायको तत्व, वह केवल मात्र गायक एक तत्व रहता है अथवा चेतनानुभूति एकमात्र शेष रह जाती है। यह तप का प्रतिफल है। तप के माध्यम से हम अपने आप को जो भूल चुके हैं या आस्वाद से रहित हो चुके हैं उसका स्वाद तप के माध्यम से मिल सकता है। जो शुद्ध तत्व की परख या शुद्ध तत्व का अवलोकन हम तप के बिना नहीं कर सकते। इसलिए पंच आचार के साथ ही मोक्ष मार्ग और पंच आचार के साथ ही शुद्धात्मानुभूति का प्रकाश उद्घाटित होता है चारित्र सार में, चारित्र चूलिका में। कुंदकुंद भगवान ने इस प्रकार कहा, हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे चारित्राचार, हे तपाचार और हे विराचार, त्वाम तावत काल पर्यंतम आशीदामी यावत काल पर्यंतम तत्प्रसादात शुद्धात्मानुभूतिम न उपलेभे। हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे तपाचार, हे विराचार, जो भिन्न भिन्न कोटि को लेकर के चल रहे हैं उसको अंगीकार किया जाता है और वह कहता है कि तुम्हारे बल से तुम्हारे प्रसाद से मैं शुद्धात्मानुभूति को प्राप्त करने वाला हूं, इसलिए तुम्हें अंगीकार करना चाहता हूं। तो भेद परक तप भी यहां पर अंगीकार नहीं किया गया, किंतु जब शुद्धात्मानुभूति होती है वहां पर केवल ध्यानावस्था आ जाती है। आज तक का ये रिकॉर्ड है, जिस किसी को केवल ज्ञान हुआ वो ध्यान में हुआ। रत्नत्रय को लेकर के पूर्व कोटि वर्ष तक भी वह बैठा रहा, यदि वह उसके योग्य तप नहीं होता तो उसे यहां से जाना पड़ता है स्वर्गादिक में। वहां से आ गया, पुनः रत्नत्रय ले लिया, पुनः उतने काल तक यदि कर लेता तप तो भी उसे ऊपर जाना पड़ता। जब तक उसकी एकीकरण नहीं हुआ था तब तक उसके केवल ज्ञान का कोई सवाल नहीं उठता। अर्थ ये हुआ, भेद में पड़ा हुआ यह उपयोग की धारा, इसको अभिन्नता की ओर लाना है। सुबह से लेकर के शाम तक वही एक क्षण आ जाता है जिस समय आपकी छाया समाप्त हो जाती है। पूर्व की ओर सूर्य उग गया है तो आप पश्चिम की ओर छाव इधर यूं पड़ने लग जाएंगे। जब पश्चिम की ओर सूर्य आ जाएगा तो पूर्व की ओर आपकी छाया बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन जिस समय वह मध्यान में ऊपर आ जाता है मध्य में आकाश में, उस समय आपकी छाया देखने के लिए नहीं मिल जाती। उसी प्रकार ध्यान की अवस्था में हमारी उपयोग बिल्कुल टंकोत्कीर्ण एक गायक पिंड का अनुभव करने लग जाता है। उसी उपयोग का नाम सम्यक तप, निश्चय तप है। उस तप को अंगीकार करने से ही हमें उस कैवल्य की उत्पत्ति हुआ करती है। उसका जो स्वाद है उन्हीं लोगों को आने वाला है। ध्यान रखना, सुनार ने सर्वप्रथम उसके साथ उसके पास कोई ऐसा ऐसी शिला दी गई पाषाण जो कि उसको देख करके उसने कहा इसमें स्वर्ण है। स्वर्ण का अवलोकन उसने किस रूप में किया, प्रश्न यह उठता है। क्या उसकी आंखों में वह स्वर्ण देखने में आया जो 5 तोला स्वर्ण है, जो बिल्कुल 100 टन सोना उस रूप में देखने में आया? नहीं, उस रूप में देखने में नहीं आया। उसकी दृष्टि में भी वह स्वर्ण अनुमानिक ही आया है। उसने अनुमान के द्वारा कहा इतना यदि यह है तो इतना यह होगा, इतने कण इसमें देखने में आए हैं तो इतना स्वर्ण होगा और इतना बट्टा होगा, इस प्रकार कह करके यह हुआ परोक्ष ज्ञान उसे, यह हुआ उसे सम्यक ज्ञान, और इतना है इसका उसे श्रद्धान हुआ और उसके लिए उसने चारित्र को भी अंगीकार कर लिया। उसको अलग करने के लिए जिस समय वह पूर्ण तपा देता है उसे, उस समय उसे देख लो। हमने बताया था 5 तोला, ये देख लो, देखने में आ रहा, तुम भी देखो और हम भी देख रहे हैं, अनुमान से कहा था। तो शुद्ध आत्मानुभूति की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगी जिसने इस तपन को सहन कर ली, किंतु उसी को ही यह तपन प्राप्त हो सकती या सही हो सकते जिसने एक बार श्रद्धान कर लिया। जिसकी श्रद्धान के बिना, उसके सम्यक ज्ञान के बिना और उसके आचरण के बिना ये 3 काल में संभव नहीं है। जिस आत्मा की चर्चा आप लोग सुनते हैं, यही चर्चा कुंद भगवान ने की है, लिखा है, और यही चर्चा यदि आप जाएंगे समोचरण में, भगवान के द्वारा भी यही कहा जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। को विदिजच्चो साउ संपड़ी काले भने जिरुओ मिनम पच्चकमेव दिट्टम परोकनाने पवत थन थन। भगवान कहते हैं जो अपने आत्म तत्व को केवल ज्ञान के द्वारा तो देख लेते हैं, वह तो उन्होंने देख लिया, लेकिन उपदेश में देंगे, उपदेश में आपको विश्वास कराएंगे, विश्वास आपका होता है तो ठीक है, और उस विश्वास के बल पर यदि समाधि में लीन हो जाते हैं तो उस साक्षात परब्रह्म का दर्शन आप लोगों को संभव है। किंतु शुरुआत में जो कोई भी प्राप्त होगा वह परोक्षणाने पवट्टंतम को जचुसाओ पच्चकमेव दिट्टम मया। वह ऐसा कौन सा विद्वान है जो कि परोक्ष ज्ञान में आने वाला वह शुद्ध आत्म तत्व साक्षात मैंने देख लिया हाथ में रखे हुए किसी वस्तु के समान, संभव नहीं है। पहले परोक्ष ज्ञान होता है जो श्रद्धानात्मक होता है, सम्यक ज्ञानात्मक होता है, संवेदन से रहित हुआ करता है। संवेदन के साथ श्रद्धान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संवेदन के साथ आपको कोई भी आवश्यकता नहीं। जिस समय हलवे का आप संवेदन कर रहे हैं उस समय आटे का स्वाद आपको नहीं आ सकेगा। जिस समय आप हलवे का स्वाद ले रहे हैं उस समय आपको घी का स्वाद नहीं आ सकता। घी का स्वाद अलग है, हलवा का स्वाद अलग है, मिश्री का स्वाद अलग है, और उसमें जो मीठा मिला हुआ है वह स्वाद अलग है। वह घी के साथ, वह आटे के साथ घुला हुआ मीठा है, और अग्नि के ताप से उसके जो कोई भी मात्रा थी वह सब कण कण में फैल करके रह रही है, इसलिए उस मीठे का स्वाद अलग आएगा। वर्तमान में जो कोई भी स्थिति रहती है उसी का स्वाद आता है, और तप के माध्यम से राग का स्वाद न आकर के स्वर्ण का जिस प्रकार दर्शन हो रहा उसी प्रकार शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन उसी संभव है। किंतु वह योग के काल में, वह एक प्रकार से तप के काल में होगा। प्रत्येक समय शुद्धात्मानुभूति प्रत्येक रत्नत्रय की धारी को संभव नहीं है। आज तक गंधर्व परमेष्ट को वह ब्रॉडकास्टिंग करते समय शुद्धात्मानुभूति हो गई वो संभव नहीं है, क्योंकि उस समय तो वह ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, उनकी वह दृष्टि क्षितिज की ओर है, जो सामने वाले बैठे श्रोतागण उसकी ओर है, शंकाओं के समाधान में उलझा हुआ उनका उपयोग है, निशंक नहीं है। मतलब क्या वो भी शंकालु है? शंकालु तो नहीं, लेकिन नहीं होते हुए भी शंका समाधान करते समय में भी शंकालु ही रहते हैं। उनका स्वाद उस समय उन्हें नहीं आ सकता, क्योंकि छठा सातवा गुणस्थान होता रहता है, उस समय वो सामायिक नहीं कर रहे हैं, उस समय उनकी समता है, समता अलग है और ध्यान में लीन होना अलग है। वह तो बना हुआ जीवन है उनका, आदि से लेकर के अंत तक बना हुआ रहता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में हमें आत्म तत्व के साथ स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बार बार स्पर्श करना कम समय में यह बात अलग है, लेकिन लगातार जीवन पर्यंत करते रहे यह संभव नहीं है। आपको एक उदाहरण दे दूं ताकि अनुभव होगा। कोई भी एक औजार है, रेजर है, और उसको शान पर चढ़ाना है, उसको तीखा बनाना है, उसको और जो है शॉर्प वाइज जिसको बोलते हैं आप, तीखा बनाना चाहते, और शान जो चलाता रहता है उसको बुलाए, या जो जहां पर चलाता वहां पर गए, फिर इसके उपरांत आपको बिठा देता हूं, आप बैठो और ये रस्सी ले लो, और इसमें लपेट करके आप खींचते चले जाओ, एक हाथ से छोड़ते जाओ एक हाथ से खींचते चले जाओ। जिस प्रकार मंथन किया जाता है नवनीत निकालने के लिए, उसी प्रकार वह दोनों हाथ से खींचता रहता है, और उस खींचने रस्सी खींचने लगे बस वह शान भी घूमने लग जाता है। लेकिन कैसे घूमता रहता है वो, एक बार यूं एक बार यूं, नहीं समझे? ऐसा नहीं कि एक ही राउंड लेता रहता, यूं राउंड लेता, ऐसा नहीं। जैसे आप खींचते हैं उसी के अनुरूप ही वह लेता रहता है, लेकिन वह चलता रहता है, रुकता नहीं। उनका कहना ऑर्डर है, रोकना नहीं इसको। आप चलाना प्रारंभ कर देते हैं और वह चलने लगा आसान, और वह वो चलाता नहीं, वह अपने हाथ में रेजर को लेता है, पत्ती को लेता हाथ में, औजार को लेता, शस्त्र को हाथ में लेता है, फिर बाद में उस शस्त्र को उस शान के ऊपर कैसे रखता है। हाँ, एक हाथ से एक कुछ ऐसा साधन रखता है जो उस शस्त्र के ऊपर रखता है, उसको दबाता है, और एक हाथ से इधर से रेजर लेता है, और शान की धार को देख करके उसको यूं लगाता रहता है। शान कैसे घूम रहा है नहीं देखता वो, ध्यान रखना हैं? उसको मालूम है घूम रहा है क्या नहीं। और इसके साथ साथ नीचे जो है अपने पैरों के ऊपर या कुछ ऐसे ईंट होता है, ईंट उसको रखता है, और उसके माध्यम से नीचे से वह दबाता रहता है, और ऊपर रेजर के ऊपर अपने हाथों से वह और दबा रखता है, और बीच बीच में उस शान के ऊपर वह बहुत होशियारी के साथ यू 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 करने लग जाता है। और जो ही वह शान के साथ उस रेजर का स्पर्श होता है, वहां पर क्या निकलता है, हाँ, अनुचटन फूल बाजे जैसे वह किरणें निकलने लग जाती हैं। बस जिस समय तप के माध्यम से आत्मा का स्पर्श हो जाता है, उस समय ऐसे शुद्धात्मा के सूक्ष्म किरणें निकलने लग जाती है। बस उस किरण के बिना उस औजार में तीखापन शार्पन नहीं आ सकता। आप चलाती जाइए रत्नत्रय के शान को, हमेशा पसीना पसीना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रखता। उसके द्वारा हमारा औजार कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। हमारे आत्मा के भीतर होने वाले जो कर्म प्रणाली है, उस कर्म प्रणाली को जलाने के लिए वो किरणें पैदा करने की आवश्यकता है, वो उष्णता पैदा करने की आवश्यकता है। उस आलोक में ही हम देख सकते हैं, जिस समय वह थोड़ा देर के लिए भी विलंब कर देता है तो वह औजार की मुख जो है जलने लग जाता है, और काले काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। वह देखता है ये कहीं बर्बाद ना हो जा, धीरे धीरे लगाता रहता है, और कहीं जा करके आप नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। आप तो बिल्कुल घुमाने वाले हैं, शान चलाने वाले, तो रस्सी से खींचते जाइए। इसी प्रकार प्रत्येक मुनि महाराज शुद्धात्मान भूति की किरणों को प्राप्त नहीं होते, किंतु बहुत काल अपेक्षित हो जाता है। जब वह तप निखरता है, संयम जो है आराधना के रूप में ढल जाता है, अनुभूति फिर बाद में होना प्रारंभ कर जाते। जब तक यह सर्विस नहीं हो, रत्नत्रय की सर्विस आवश्यक है, फिर बाद में आप में वह कला आ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी कभी वह मुख उसमें थोड़े भी आंख चूक जाए तो वह बर्बाद भी हो जाती है धार, जो पूरे के पूरे शास्त्र ही बर्बाद हो जाता है। शुद्धात्मा अनुभूति ऐसे के खेल है, कुछ क्षण के लिए वह क्षण आ जाते हैं जिसमें वह इस प्रकार का हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बस सम्यक दर्शन हो गया तो वह झलक मारने लगा, भीतर ही भीतर, क्या भीतर ही भीतर है, अभी हाथ भी रस्सी भी नहीं हिल रही और भीतर ही भीतर क्या हो गया, भावना है वो केवल। रत्नत्रय के बिना यह संभव नहीं। शुद्धात्म प्रकाशा भावात, क्यों, सकल संयमा भावा, गृहस्थानांतु अवकाशो नास्ति, क्यों हमेशा पंचेंद्रिय विषय आसक्तानाम गृहस्थानाम आर्त रौद्र परिणतानाम निश्चय धर्मस्य अवकाश न अस्ति। ये कहा अवकाश नहीं है। जो आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर नहीं उठ सकते। आर ध्यान की प्रणाली कहां तक चलती है, रौद्र ध्यान की प्रणाली कहां तक चलती है, जहां तक अनुमात्र भी परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रह रखे गए हैं तब तक उसको कभी भी संभव ही नहीं रौद्र ध्यान छूट जाए। परिग्रह संज्ञा जब तक दूर नहीं होती तब तक वह 10 परिग्रहों का त्याग नहीं कर सकता बाहर से। और उसके साथ ये झलक मारना केवल कहना कहना है, भावना है यूं कह सकते हैं। और आर्य ध्यान की प्रणाली कहां तक चलेगी, छठे गुणस्थान तक चलेगी। प्रमाद अवस्था जब तक रहेगी तब तक छठे गुणस्थान में 15 प्रमाद ही होते हैं और कोई नहीं होते। तीर्थंकर भी क्यों ना हो उसे छठे गुणस्थान में आए हैं तो नियम से 15 प्रमादों में नियम से एक प्रमाद झटका मारेगा। वो किस रूप में मारेगा वो भगवान जानते हैं या वो खुद जानते हैं, क्योंकि प्रमाद अवस्था उसी का नाम है। एक बार महाराज जी ने पूछा था उनको पीड़ा चिंतन कब होती है। ठीक है उनकी पीड़ा चिंतन जो है वो ही जानते हैं लेकिन बता तो देते हैं जिस समय वो आहार के लिए निकलेंगे नियम से पीड़ा हुई है उनके पेट में। खाने की इच्छा ये बता देती है। सामान्य व्यक्ति जैसे वो खाएंगे नहीं बिल्कुल ठीक है, बिना मतलब तो वो खाएंगे नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भोजन के लिए उठे हैं क्यों उठे हैं। कुछ लोग कहते हैं वो भी गौरव की बात है, वो तो चर्या दिखाना चाहते हैं इसलिए उठते हैं। तो हमने ये कहा चर्या दिखाना हो तो एक दिन दो दिन दिखा दो फिर बाद में बंद कर दो। 6 महीने तक जो है श्रावकों के गली में घूमने की क्या आवश्यकता थी। वज्र नारा संगन क्षाय सम्यक दर्शन रत्नत्रय मन परे ज्ञान तीर्थ प्रकृति का उदय नियम से आने वाला है। फिर भी आचार्य कहते हैं भावों की प्रणाली भगवान जानते हैं। हमने यही कहा था कि वो उठे हैं तो नियम से थोड़ी बहुत, देखो 10 दिन का भूखा उठ जाता है तो वह जल्दी हड़बड़ हड़बड़ करके खा लेगा, ये ठीक है वो ऐसे तो नहीं खाएंगे। लेकिन जो खा रहे हैं बड़े बड़े सेठ साहब क्या उनको भूख नहीं है, बिना भूख के खा रहे हैं? संभव नहीं है। बिना भूख का खाना ये संभव नहीं है। बिना भूख का खाएगा तो आज की साइंस भी कहती है वो पचेगा नहीं, वो बीच में वहां बीच जा करके बचेगा वो। और खाया हुआ यदि बच जाता है तो क्या होगा, विष फैलेगा। जठराग्नि के बिना वह संभव नहीं है, भूख के बिना वह संभव नहीं है, रुचि के बिना वह संभव नहीं है। बिना रुचि के यदि खाया जाएगा तो वह उल्टी हो जाए या बिल्कुल जड़वत पिंडवत बैठ जाएगा। भीतर है जठराग्नि है, इच्छा है, लालारस है, सब कुछ है। इसी को बोलते छठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा है। उनकी आहार संज्ञा औपचारिक नहीं है, मुख्य है और वस्तुतः है। 1000 वर्ष तक उनके लिए कवल बनाने पड़े। कवल जो बनाया जाता है ये नियम है, उसके प्रति राग के बिना वह कवल नहीं बन सकता। उसको आवश्यकता नहीं माने बिना वह हाथ उठ नहीं सकता। महाराज कवल तो हम बना बना करके दे रहे थे, आप ये कह दो हाँ बना बना करके दे रहे थे, वो बना बना करके ले रहे थे। कहना तो यही पड़ेगा एक कवल के उपरांत दूसरी कवल के लिए हाथ आगे क्यों। यदि हाथ यूं आ जाता है तो उधर कवल बन जाता है। कवल का मतलब कोर, नहीं समझ रहे हो, कवल का मतलब और कोई शब्द नहीं है, कवल का मतलब कोर ग्रास। तो ग्रास कब तक बनाते रहते हैं आप लोग, नहीं समझे, परीक्षा आप करते रहते हैं महाराज अब लेना चाहते हैं। नहीं अभी अभी काम बंद कहां किए हम, अभी उधर से ग्रास आ गए मान लीजिए अब नहीं लेना इनको तो उधर ग्रास बनना कवल बनना बंद हो जाएंगे। भैया पढ़ लो नहीं तो बैठ जाएंगे। इतनी तो रहती है, लेकिन इसके उपरांत भी पानी की जगह पानी लेते हैं, ग्रास की जगह ग्रास लेते हैं, साग की जगह साग लेते हैं, दाल की जगह दाल भी लेते हैं, मांग करके नहीं लेते, ध्यान रखना। लेकिन इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जिस रूप में भोजन आवश्यक है उस रूप में लेते हैं। यथालब्ध का अर्थ यह नहीं है कि अद्वा तद्वा लेते हैं, अच्छे ढंग से लेते हैं, मतलब साइंस के अनुरूप लेते हैं, आरोग्य के अनुरूप लेते हैं, विकृतियों को बचाने के लिए लेते हैं, सब कुछ शरीर की स्थिति रोकने के लिए, आयु कर्म के उदीर्णा को रोकने के लिए, धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए, वैयावृत्ति के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए आहार को अंगीकार करते हैं, बहुत बुद्धिपूर्वक लेते हैं, ध्यान रखना। ऐसा बुद्धिपूर्वक लेने वाला विश्व में कोई एकादी होगा, या तो वैज्ञानिक लेते हैं या तो हम लेते हैं, और दोनों वैज्ञानिक हैं ही, उनका विषय जड़ है, हमारा विषय चेतन है, इतना अंतर है। वे सवेतन होते हैं, हम सवेतन नहीं है, हम सचेतन हैं, वेतन की कोई आद, लेकिन है दोनों काम एक, बहुत जागरूकता के साथ लेते हैं, वो तोड़ तोड़ करके लेते हैं, नाप नाप करके लेते हैं, और हम भी इसी प्रकार लेते हैं। महाराज आप स्वाद तो लेते नहीं, लेते नहीं स्वाद, आप नहीं लेते सही स्वाद तो हम ही लेते हैं, ये कैसे कुछ समझ में नहीं आता? समझ में आता, ओरिजिनल जो कुछ भी है उसको उसी रूप में ले लेते हैं, और सही पूछा जाए जो कषाय नहीं करता वह सही स्वाद जानता है, और जो कषाय कर जाता वह स्वाद ही नहीं जानता, वह कहता मात्र बहुत अच्छा बहुत है, बहुत अच्छा कहने वाला स्वाद नहीं लेता, ध्यान रखना, बहुत अच्छा कहने वाला वह कह नहीं सकता कि ये बहुत अच्छा जिस समय स्वाद आ रहा उस समय वह कहता नहीं, और जिस समय कहता है उस समय उसको स्वाद नहीं आ रहा। मान लीजिए पंगत में आप बैठे हैं और किसी ने रसोई बनाई है और वह खीर बनी है और आप सब बैठे हैं, बहुत अच्छे ढंग की खीर बनाई है, पंगत में बैठा दे, थाली में वह परोस दी गई, और वह कहता है वही चालू कर दो, तो आपने चालू कर दिया, फिर बाद में वो पूछता है क्यों भैया कैसा है, भैया कहेंगे आप और एक चम्मच लाओ और एक कटोरा लाओ, पूछो मत, अभी बीच में बाधा हो जाएगी, करने दो पे उड़ाने दो, आंख मेच करके स्वाद लेने में लीन हो जाते हैं, जैसे निर्विकल समाधि लग गई वहां पर, अनुभूति के समय पर सही स्वाद आता है, हर्ष विषाद के समय स्वाद छूट जाता है, स्वाद का केवल प्रदर्शन होता है, वह स्वाद उस समय छूट गया, बिल्कुल स्मृति में रह गई तो बासी बन गई, वर्तमान में स्वाद आता है, स्वाद का स्वाद की जो प्ररूपना है वह वस्तुतः स्वाद नहीं है, एकमात्र वह उस स्वाद में ही हमेशा लीन नहीं रह सकता, इसलिए जब बाहर आ जाता है तो कह देता है, उसका स्वाद तो वही जानता है, इसलिए अनुभूति के काल में कोई भी हो वह प्रमत्त नहीं रहेगा, अप्रमत्त रहेगा, शुद्धात्मा अनुभूति की बात कही जा रही है, इसलिए गृहस्थ को प्रमाद से रहित तो संभव ही नहीं है, गृहस्थ प्रमाद से रहित नहीं हो सकता, छठे गुणस्थान तक प्रमाद बना रहता, कोई भी समय आपको हमेशा, महाराज हम शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे हैं, बहुत मनोयोग के साथ सुन रहे हैं, इस समय तो आराधना नहीं रौद्र ध्यान नहीं बिल्कुल धर्म ध्यान है, तो आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान की ओर आपकी उपयोग धारा अवश्य है, लेकिन जहां पर बैठे हैं वहां पर भी हर्ष और विषाद की मात्रा भीतर ही भीतर चलती रहती है, हड्डी का बुखार प्रत्येक व्यक्ति नहीं नाप सकता, लेकिन यदि वह है तो नियम से आपके जठराग्नि के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, सबके ऊपर उसका प्रभाव है, आपका तेज ये कहता है, आपकी संज्ञाएं ये बता देती हैं कि नियम से आपके भीतर कुछ न कुछ शंकाएं रहती हैं, वह बहुत सूक्ष्म रह जाती है, लेकिन उसका अभाव होता ऐसा नहीं। समझने के लिए, दो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, एक को 800 के वेतन मिल रहा है और एक को 500 का वेतन मिल रहा है, 500 वाला बहुत खुश है, 800 वाला थोड़ा खुश्क है, क्यों भैया क्या बात हो गई, आपको भी नौकरी लग गई, बताते नौकरी तो लग गई है किंतु आपका अलग है मेरा अलग है, सुना है मुझे तो 500 मिलता, आपको तो 800 मिलता। हाँ मिलता तो है, फिर ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या मतलब है? मुझे 800 मिल जाता तो क्या बताऊं, मैं तो टी पार्टी दे देता। नहीं मैं भी दे सकता हूँ, मुझे भी 500 ही मिल जाता तो दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन बात ऐसी, 800 तो मिल सकता, मिल रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं। सुना नहीं आपने? है टेम्पररी है, 800 कोई बेहतर, फिर भी आपके शर्त है 12 घंटे के उपरांत मुझे यहाँ से उठना है, 1 घंटे के उपरांत मुझे दुकान जाना। क्या पता दुकान में अब ग्राहक आवे या नहीं आवे, अभी प्रतिमा तो ले ली, लेकिन अरहंत सिद्ध आचार्य उझाए कुत्ता गुड़ की भीली खाए। क्यों उसे हटाऊं सामायिक जाए, नहीं हटाऊं भेली जाए, अब क्या करें बोलो? मन में ये रहता है 1 घंटे के बाद क्या होने वाला क्या पता। हमेशा परिग्रह संज्ञा जब तक बनी रहती है, जब तक परिग्रह का त्याग ठीक ठीक मन से वचन से काय से आजीवन नहीं होता, तब तक के लिए वह परिग्रह संज्ञा भीतर ही भीतर चुभती रहती है। 24 घंटा बनी रहने वाली परिग्रह संज्ञा, आर संज्ञा कुछ समय के लिए है, भय संज्ञा कुछ समय के लिए है, भय की प्रकृति के उदय का अभाव भी कुछ स्थानों में बताया है, लेकिन ये ध्यान रखना परिग्रह संज्ञा का अभाव नहीं हो सकता। परिग्रह को एक तिलतुष मात्र भी नहीं है पास मान लीजिए, फिर भी परिग्रह की लालसा उसके छूट नहीं सकती। इसलिए सामायिक के काल में उसके लिए क्या बताया, प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याज्ञान चतुष्टय का तनुत्व अर्थात त्रिश बहुत हो गया, इसलिए चरित्र मोह परिणामा मंदा। चारित्र मोहनी की प्रकृति के उदय तो है लेकिन मंद बहुत राग द्वेष है, किंतु सत्वेन दुर्वधारा, अनंता प्रत्याख्यान का उदय है लेकिन उसका सत्व है, इसका अवधारण बहुत दुरूह है, इसलिए उसको यति के समान कहा, लेकिन फिर भी वह संयमी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार टेम्पररी है, उतने काल के लिए ऐसा झलक मार रहा, भावना है, केवल भावना है। 24 घंटा में यदि ऐसा होता तो असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी भी वहां पर चालू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाते। जो सामायिक के काल में श्रावक की उपयोग धारा रहती है, उससे अनंत गुणी विशुद्ध धारा महाराज श्री के भोजन के काल में भी रहती है और शयन के काल में भी रहती है। ध्यान रखो महाराज, ये तो बहुत अच्छा तो बन जाओ, बिल्कुल उल्टा है आपका कर्तव्य, हमारे कर्तव्य बिल्कुल उल्टा है। सामने ही ध्यान रखना, आप कमाते हैं दूसरे को खिलाते हैं फिर खाते हैं, हम कमाते नहीं दूसरे को खिलाते नहीं और खिलाएंगे नहीं, ऐसा संकल्प ले लिया है, कमाएंगे भी नहीं ऐसा संकल्प ले लिया है और खाएंगे नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प नहीं लिया है, ध्यान रखना। आप बैठ करके खाते हैं, हम उठ करके खाते हैं, फिर आप एक हाथ से खाते हैं, हम दो हाथ से खाते हैं, और क्या चाहिए बोलो? आप थाली मांझते फराज मांझते रहो, हम चले जाते हैं, देख करके हंस जाते हैं, अरे मांझो मांझो ठीक है हम चले जा रहे हैं। हाँ महाराज इतना ही मिल जाए यही काफी है, इसी में वह संतुष्ट हो जाता है। नहीं सुन, दोनों हाथ से है गीले हो गए हैं, हाँ महाराज जैसे बहुत अच्छा, ऐसा आनंद दो, हाँ ठीक है बहुत आनंद आ गया। उसकी जितनी भूख है उसमें तो करेगा, भूख है उसमें तो करेगा। आचार्य कहते हैं दुनियादारी के तो बोझ उसके सिर में विकल्प रहते हैं, इसके लिए कुछ नहीं, इसलिए जल की रेखा के समान मुनियों की यह उपयोग विकल्प धारा बताए। जल में आप रेखा खींचिए, सामने सा आगे आगे खींचते चली जाइए, पीछे पीछे वह बंद होती चली जाए। ऐसा क्यों होता? आचार्य कहते हैं उस उपयोग में जितनी देर तक टिकने की संभावना है, विकल्प को तो नहीं है। आगे पहुंच गए, फिर इसके उपरांत जब वह भी लीन हो जाते हैं तो पता भी नहीं पता, हुए रेखा भी नहीं, लहर भी नहीं, कुछ भी नहीं, विकल्प भी नहीं, लीन हो जाते हैं, रहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये भगवद गीता की कारिका है, वह स्थित प्रज्ञ की बात है या उस तपस्वी की बात है, उस जीवन की लीला, उसका एक प्रवाह, उसकी एक सहज पद्धति जीवन की अनोखी होती है। विषय तो सबके छूट जाते हैं, कोई भी जंगल गया, मान लो भटक गया, आना तो चाहता है शहर लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, और वहां पर महीनों तक रह गया, विषय सब छूट गए उसके, वनवासी कहलाएगा वो, लेकिन रस अभी भी आ रहा है, क्योंकि रस का त्याग नहीं किया उसने। रस भी किसका छूट जाता है, जिसको भीतर की चमक देखने में आ जाए। परम दृष्टवा रस अपि निवर्तते, जिसको आत्मानुभूति वह शुद्धात्मा का प्रकाश मिला, फिर बाद में वह अंधकार की ओर बढ़ेगा नहीं। वह मिले या न मिले, कितनी देर तक नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पर रहेगा वो, और वहीं पर रहेगा तो नियम से पाएगा पुनः वह। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिलेगा तो यही भोजन करूंगा लेकिन दूसरा भोजन नहीं करूंगा, नहीं मिलेगा नहीं सही लेकिन करूंगा तो ये अपनी आग में मिल जाता। यह एक जीवन का एक निर्धारण, एक निर्णय, एक संकल्प, एक ऐसा सांचा बना दिया है, उस सांचे में अपने आप को अर्पित कर दिया, ढाल दिया, अब उसी में उसका जीवन पनपेगा। यह आवश्यक होता, मुनि ने ऐसा संकल्प लिया, इसी संयम के सांचे में रहूंगा और उस सांचे में ढलने के उपरांत उसको मैं तपाऊंगा, सब कुछ करूंगा, इसके उपरांत वह मिट्टी, मिट्टी के द्वारा वह ईंट बन जाए, ईंट बन जाए, कीचड़ जैसे रहते, सांचे में उसको ढाल दिया जाता, उसको सांचे में उसका आकार प्रकार हो जाता, फिर बाद में उसको तपाया जाता है, ऐसी ईंट बन जाए जो वह पत्थर की उम्र काम कर जाती है और वह बरसों तक आपके लिए भवन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार संयम के माध्यम से, तप के माध्यम से हमारा जीवन ऐसा बन जाता है, बिल्कुल शांत निर्विघ्न, कोई भी मतलब नहीं, गिरी गुफा इत्यादि में रहे और फिर भी क्या, कोई भी मतलब नहीं, चिंता नहीं, मरण सन्निकट भी आ जाए तो वह वेलकम कह देते हैं और आप कहते हैं वेलगो, तीन काल में वेलगो नहीं होगा, ध्यान रखना। वो कहता है कि तुम्हें लेकर के जाऊंगा तो बाल्यावस्था आती है चली जाती है, किशोर अवस्था आती है चली जाती है, युवावस्था आती है चली जाती है, और प्रौढ़ावस्था आती है चली जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है और आपको ले जाती है, जाएगी नहीं वो, तो फिर आप जाओगे उसके साथ, जानो ही पड़े। क्या हो, ध्यान रखो, उससे पहले यदि अपने आत्मा में लीन होकर के सोचेंगे तो कोई भी चिंता नहीं है, वह आत्म तत्व का अवलोकन तप की भूमिका में ही संभव है, और वह किरण, वह प्रकाश उसी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं जो व्यक्ति एकमात्र संयममय जीवन बना करके और बार बार तप की भट्टी में अपने आप को वह ढूंढता रहता है, और काली किट्टिमा वगैरह जो कुछ भी है तो सब ठीक हो जाता, सुनार उस पाषाण को गलाता है, जलाता है उसको, बार बार 16 बार वह अपने उस ताप देता है, 16 वाणी का सोना माना जाता है, अर्थात 16 बार उसको छन आ जाता है तपा तपा करके, तब कहीं उसको यह रंग मिल जाता है और उसको स्वर्ण बोलते हैं। स्वर्ण का अर्थ क्या, सुवर्ण, बहुत अच्छा ढंग का है, और उसका वह स्ववर्ण, वह अपना वर्ण है, अन्यत्र कहीं मिल नहीं सकता, 16 बार तपना आवश्यक होता है। आप लोगों को कितने बार तपना है, एक ही बार तपना है, उत्तम तपन, उत्तम तप इसलिए रखा ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं किंतु कर्मक ख्यात कर्म के क्षय के लिए हम उत्तम तप को एक मनुष्य जीवन में एक बार तपे अनंतो जीवन व्यतीत हो गए। इस शरीर के पोषण के लिए आत्मा को हमने जला दिया, आत्मा को हमने सुखा दिया, आत्मा को हमने भूखा प्यासा और अनाथ बना दिया, फिर भी शरीर का पोषण एक बार भी नहीं हुआ। किंतु एक बार उस आत्मा के पोषण के लिए, उस आत्मा की पुष्टि के लिए, उसको बलवान बनाने के लिए इस शरीर को एक बार कृष किया जाए। लेकिन कृष यद्वा तद्वा नहीं, विधिवत इसको कृष नहीं करना, इसके कृष करने से भीतर की कषाएं कृष हो जाएं। आप तपाते हैं, दूध तपाते हैं, दूध तपाते हैं ना, हाँ। लेकिन दूध कब तपता है? जब भुगोनी रखते हो, भुगोनी तपेगा तब दूध तपेगा। उद्देश्य क्या है आपको? दूध तपाना है। खाली दूध नहीं तप सकेगा, और दूध में से विकार तभी हम निकाल सकते हैं जब तपेगी तपाएंगे उसको। उसी प्रकार भुगोनी में रख करके उसको तपाना प्रारंभ तो भुगोनी तप जाते। लेकिन ये ध्यान रखना, शरीर को नहीं तपाना किंतु शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा आत्म तत्व के भीतर रहने वाले जो कषाय हैं उन कषायों को तपाना है। कषाय जब तप जाएंगे, निकल जाएंगे वाष्प के रूप में, तो वह अपने आप जल के अभाव में रह जाएगा। जैसे जैसे तपेंगे वैसे वैसे विकास की ओर चला जाता है आत्मा, और ऐसा विकास की ओर चला जाता है कि वह फिर दूसरे के सहारे से रहना पसंद नहीं करता। वह भीतर ही भीतर रत्नत्रय में ढलने की भी वह प्रयास नहीं करता, भीतर ही भीतर अपने आत्मा में विकल्प में आने की चेष्टा नहीं करता। क्या सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान, क्या सम्यक चारित्र, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा तो एकमात्र भीतर ही भीतर रहना। जितना वह अपने आप में रहेगा उतना ही कर्म का क्षय विशेष रूप से करता चला जाएगा। दीपक की लौ है, उसके द्वारा कई कार्य हो सकते हैं। एक तो यह है, इर्द गिर्द में जो कोई वस्तु गिरी है उनको वह प्रकाशित कर देगी। लेकिन हवा का झोंका भी वह खा रही है, इसलिए यूं यूं हो रही है। जिस समय यूं यूं हो रही है उस समय कुछ दिखता तो है, लेकिन उस प्रकाश में हम पढ़ नहीं पाते विशेष ढंग से। फिर भी पढ़ जाए, लेकिन उस समय उसके ऊपर हाथ रख दो तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो उस समय उस लोक के द्वारा जो कार्य होना आवश्यक था वो नहीं हो पा रहा, और जो ही हवा का झोंका बंद हो गया और यूं वह खड़ी हो गई, यूं खड़ी हो गई, उस समय देखो उस प्रकाश में आप ठीक ठीक पढ़ भी सकोगे, और उसके ऊपर हाथ रख करके देख तो लो क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। हाँ, उसी प्रकार उपयोग जब तप के माध्यम से टंकोत्कीर्ण हो जाता है, हवा का झोंका रत्नत्रय है, ध्यान रखना। कभी त्याग की बात, कभी तत्व चिंतन की बात, कभी श्रद्धान की बात, कभी वो बात, कभी ये बात, लेकिन जिस समय तप की आराधना आ जाते सब संयोगज भाव समाप्त हो जाते हैं, और वह अकेला हवा के झोंका के बिना यूं रह जाता, और यूं रह जाता तो क्या हो जाता है, इधर जलना भी प्रारंभ कर देता है और विकास विशेष रूप से प्रकाशित करना भी प्रारंभ कर देता है। जलने का अर्थ कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और प्रकाशित होने का अर्थ हमारा आत्म तत्व कर्म की कीर्तिमान नाश होने के कारण ज्वलमान होकर के अपने सामने आने लग जाता है। इस प्रकार आपका समय हो रहा है, आप जागृत हो जाइए, हो रहा है ना, हाँ एक मिनट है। एक रत्न दीपक की उपमा दी गई है और एक चालू एक दीपक की उपमा दी गई है। चालू दीपक हवा के द्वारा यूं हो जाता किंतु रत्न दीपक जो है हवा में भी रखो तो भी उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाती, उसका प्रकाश कभी भी कम बेसी नहीं हो पाता। जो का त्यों, चाहे वह बादल हो जाए, चाहे वो दिन अस्त हो जाए, कैसे भी हो जाए, उसके जो प्रकाश है वह हमेशा एक सार ही मिला करता है। उसी प्रकार तप की भूमिका में आत्मा की वह ज्योति ऐसी निखरने लग जाती है हवा के अभाव में, वह एकमात्र आत्म तत्व को ही प्रकाशित करने में सक्षम हो जाते। उस आलोक में, उस प्रकाश में जो आत्मा का अनुभव करता है उसे जो आनंद मिलता है उसके लिए आचार्य कहते हैं वह आनंद विश्व में किसी के जीवों में एक सेकंड के लिए भी घटित होने वाले नहीं हैं। यूं है सकल संयम चरित सुनियो स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवर्ति सब यू चिंत निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद ले हो सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र कहो नाही कहो। कितनी अद्भुत बात है ये, वह अपने आत्मा के पास निधि है, वह आनंद अपने पास है जो इंद्र के लिए उपलब्ध नहीं, जो अहमिंद्र के लिए उपलब्ध नहीं, जो क्षय समय दृष्टि के लिए उपलब्ध नहीं, जो चक्रवर्ती के लिए उपलब्ध नहीं, नागेंद्र के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अहमिंद्र के लिए भी नहीं, किंतु जो इंद्रियों को वशभूत करके अपने आत्मा में लीन है, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई करना धरना, कोई छोड़ना, ये करना वो करना, कोच भी नहीं, शांत बैठे हैं, पर की प्रवृत्ति छोड़ करके अपने आत्मा में लीन है, उनके लिए जो एक सेकंड में आनंद मिलता विश्व में किसी को भी नहीं मिल सकता, ऐसा अनुभव हमारे हाथ में है, स्वाश्रित है। लेकिन यह अज्ञान की तो बात है, विश्व की छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए मौलिक समय को यह संसारी प्राणी खर्च कर रहा है। इस खर्च करने की ओर देख करके कभी कभी करुणा आती है और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वस्तु तत्व यह नहीं है, इस प्रकार करना करने की बात नहीं है। इस प्रकार करना करते चले जाओगे तो करना करने के पात्र ऐसी संख्या तो हमेशा मिलती जाएगी, तुम अपने देख लो। ये ध्यान रखना, पुरसना है, किसी को खाना खिलाना है तो कब तक खिलाओगे, खिलाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए कि नहीं, इसलिए पहले कह दिया जाता है। देखो बनाने वाले आप हो, परिश्रम करने वाले आप हो और खिलाएंगे भी आप, लेकिन ये ध्यान रखना आपको चक्कर आ जाएंगे तो हम कोई खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, इसलिए आप अच्छे ढंग से खा लो, तगड़े हो जाओ, फिर बाद में हमें प्रश्न के लिए आ जाओ। इसी प्रकार आचार्यों ने यह कहा है कि अच्छे ढंग से तपो, अच्छे ढंग से संयमित हो जाओ और भीतर की काली मां जितने आवश्यक उतने सारे सारे समाप्त कर दो, फिर बाद में प्रकाश हाथ में लेकर के इन अंधों के लिए भी कुछ सहारा दे दो। ठीक है, वो आना चाहते हैं तो दे देना, नहीं तो अपने काम में और मस्त हो जाना, नहीं तो पुरस्ते पुरस्ते बैठे और आप जो है उठने के कोई काम ही नहीं कर रहे। 4 बज गए, आप उठिए, अब भक्ति बोलिए, ध्यान रखो सम्यक तप है, कुछ तप गए थे इसलिए आज कल से शाम से देखो संयम लेने के उपरांत, नहीं समझे, संयम लेने के उपरांत तप आने वाला था, तपेगा तपेगा तो वहां आज इतना वर्ष गया कि शांति हो गई, नहीं समझे। इसी प्रकार जीवन काल में तप कुछ ही क्षणों के लिए भी आ जाएगा, शांति हो जाती है, सामायिक में भी शांति है, सामायिक तप करते समय भी शांति है, उसके उपरांत भी वो कहता है कि हाँ जीवन में कुछ अनोखी चीज की उपलब्धि तो मुझे हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं है, हम जो कुछ भी काम करना चाहते थे प्रारंभ हो चुका और जितना करना चाहे कर सकते हैं, कोई रास्ते की अब आवश्यकता नहीं, कोई सहारे की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में सक्षम हो गया हूँ। इस प्रकार रत्नत्रय के धारक हमेशा चिंतन करते हुए अपने आप को सुखी शांति और जो दुखी है उनके लिए शांति के किरण देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। वो सामने वाले ले या न ले, उनके कोई भी चिंता नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं लेता है, इसलिए कभी हर्ष हो जाए नहीं, कभी विषाद हो जाए नहीं, ये तो संसार की रीत है, लेना नहीं लेना ठीक है, आज तक हमने भी नहीं ली थी लेकिन आज जो है कुछ सौभाग्य का उदय है कि हमने ले लिया, उसका अनुभव किया, इनको भी इस प्रकार जब लगेगी भीतर तब ले लेंगे, नहीं लेंगे तो हमें कोई घाटा नहीं है, हमें शांति है, पूरी शांति है। हम यही चाहते हैं शांतिनाथ भगवान से, सबको शांति मिले, नहीं मिले तो हमें कोई मतलब नहीं, मिल जाए तो कुछ और शांति विशेष शांति हो सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति एक शांति की जिसने प्राप्त की है वह दूसरे के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार एक से दो होते हैं और एक के सामने एक रखे तो 11 भी हो सकते हैं, और एक रख दो तो 111 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ती चली जाएंगी संख्या, सिद्ध परमेश्वरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना, पहले से सिद्ध संख्या, सिद्ध परमेश्वरों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये तप का ही प्रतिफल है, और यह तप का यह भी प्रतिफल है, संसारी जीवों की संख्या घटती जा रही है। ऐसी पार्टी का निर्माण हो चुका है, अब इसकी संख्या तो बढ़ती जाएगी और सामने वाले की संख्या घटती जाएगी। भले ही पूर्ण नहीं हो बात नहीं है, लेकिन घटेगी अवश्य। संसार में से एक एक जीव की संख्या कम होती जा रही है, अनंत है ठीक, लेकिन फिर भी इस सम्यक तप के छाव में आकर के या इसके शरण में आकर के वह व्यक्ति अनंत काल के तपा हुआ है, शांति का अनुभव कर रहा है, करता जाएगा और आगे भी करेगा। यही एकमात्र हमारे लिए शरण योग्य महावीर।